विवेक की जो परिभाषा है शास्त्रों में, मैं उस परिभाषा के बारे में समय बात नहीं करूंगा। आपके अंदर क्या समझ चाहिए या क्या विवेक चाहिए ताकि सिमरन में आपका मन लगे और इसकी तीव्र आवश्यकता आप महसूस करें। इसमें क्या समझ जरूरी है उस पर थोड़ा विचार करते हैं। जितना भी हम इस सिमरन का महत्व समझते हैं और जैसे भी करते हैं, एक चीज हमने नोट की होगी, सिमरन करते तो हैं, नियम भी बना रखा है, लेकिन जो लगन उसमें होनी चाहिए वो लगन हमको खुद ही लगता है वो है नहीं। और उसका कारण ये है कि मुझे अपने बारे में सही सही ज्ञान नहीं, और इसीलिए ईश्वर के बारे में भी सही सही ज्ञान नहीं। इसीलिए पहले अपने बारे में विचार करें जो ज्ञान आपके सिमरन में सहायक सिद्ध होगा। अपना ज्ञान ये है पहले तो मेरा जीवन का जो उद्देश्य है, हम सब जानते हैं कि सुख की प्राप्ति है या संतोष की प्राप्ति है। संसार में ऐसा जीवन व्यतीत हो और संसार ऐसे चले कि मैं हर समय संतुष्ट रहूं, इसी संतोष का ही दूसरा नाम सुख है और सुख जीवन। प्रैक्टिकली तो हम जो भी हमारी इच्छा होती है या जो कमी हमको महसूस होती है, तो वो कमी जब पूर्ण होती है तो हमें सुख का अनुभव होता है। इसलिए हम सुख की बहुत सी वैरायटी जानते हैं, इस वस्तु का सुख, उस भोग का सुख, लेकिन इन सब के लिए एक कॉमन टर्म है जिसको कहते हैं संतोष। तो हर प्रकार के सुख को मिला दिया जाए उसका नाम है संतोष। तो वो संतोष मुझको हर वक्त चाहिए, सदैव चाहिए, लेकिन वो बार बार हमसे छिनता रहता है और दिन भर हम देखते हैं कि कितने आइटम्स हमको असंतुष्ट कर देते हैं और कितने हमको संतुष्ट करते हैं। तो ये जो असंतोषी हालत है ये हमारी बरकरार रहती है, ये कायम रहती है, ये हमारी खत्म नहीं होती। संतोष इसीलिए कहते हैं कि जहां संतोष है ही नहीं वहां तुम संतोष की खोज कर रहे हो, इसलिए ये आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो फिर वो संतोष कहां है? इसका एक सरल सा विवेचन जो हमको याद रखना चाहिए, इस विवेचन को इतना याद रखना चाहिए या इस प्रकार समझ लेना चाहिए कि मेरे दिमाग से मैं सो के भी जाऊं ना, कोई मुझसे पूछे तो वो विवेचन मुझको याद हो, यही कहे मेरे समझ के अंतर्गत हो। जो आप चीज समझ लेते हो उसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली याद रहता है। तो समझ मुझे अपने बारे में आज क्या है, बिना किसी के समझाए मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं शरीर हूं। कोई नहीं सिखाता, एक बालक कोई नहीं सिखाता, वो स्वाभाविक रूप से जानता है कि मैं शरीर हूं। और जितने लोग घूम रहे हैं ये भी शरीर, इसमें उसे कोई कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन जब ईश्वर का मसला आता है, ईश्वर प्राप्ति का मसला आता है, तो सत्पुरुष ये बात कहते हैं कि संसार में संतोष है ही नहीं, तब हमको ये सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि जिसके अंदर संतोष है, महाजी कहते हैं प्रेमी, जिसके अंदर आनंद है, जिसके अंदर चैन है, जिसके अंदर शांति है, उस वस्तु का नाम है ईश्वर। तो उस ईश्वर को मैं कैसे समझूं और अपने आप को कैसे समझूं, इसके लिए शास्त्रों की रचना होती है, इसी के लिए गीता की रचना हुई, इसी के लिए संत अभिलाष की रचना हुई, इसी के लिए अन्य शास्त्र सत्पुरुषों द्वारा प्रकट होते हैं, क्योंकि उन्होंने सिखाना आपको यही है। तो मैं यदि अपने असंतोष को देखूं, मैं क्यों बार बार असंतुष्ट होता हूं, ये कहां से पैदा होता है, तो अपनी देह के अंदर मैं विचार करके देखूं। मुझको अच्छी तरह से ये बात पता है कि मेरे मन में जब कोई भी इच्छा उठती है, इच्छा उठने के बाद मेरे अंदर एक बेचैनी शुरू हो जाती है, और वो किस रूप में होती है कि ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, चाहे वो कपड़े पहनने की इच्छा हो, चाहे वो कहीं घूमने की इच्छा हो, चाहे परिवार बढ़ाने की इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो सकती है, लेकिन उसका जो इफेक्ट मेरे पर होता है वो सीधा सीधा ये होता है कि मेरी बेचैनी शुरू हो जाती है, अर्थात में असंतुष्ट हो जाता है। अब पुनः इच्छा उठने से पहले जो संतोष था उसकी प्राप्ति के लिए मेरे पास एक ही अल्टरनेटिव होता है कि इस इच्छा को किसी प्रकार में अपने साधनों से पूरा कर ले। एक छोटा बालक हो उसकी भी ये स्थिति होती है, बड़ा बुजुर्ग हो उसकी भी ये स्थिति होती है। तो फिर मैं अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करता हूं, देह का इस्तेमाल करता हूं, और संसार के पदार्थ, संसार के लोगों का इस्तेमाल करता हूं, और इनके द्वारा मैं अपनी इच्छा पूर्ण करता हूं। अब विचार करने की बात यह है कि जिस समय वो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो मुझको खुशी का अनुभव होता है, जिसका दूसरा नाम संतोष है। तो इच्छा उठने से पहले मैं संतुष्ट ही था, यदि इच्छा के कारण मैं असंतुष्ट हुआ और इच्छा पूर्ति के बाद फिर मैं वही मूल अवस्था में आ गया जिसको संतोष कह रहे हैं। यहां विचार करने की बात यह है कि मुझको अच्छी तरह से पता है कि मैंने अपनी देह का इस्तेमाल किया, संसार की वस्तुओं का इस्तेमाल किया, इनका या यूं कह ले इनका उपयोग किया उस डिजायर को पूर्ण करने के लिए, और जब वो पूर्ण हो गई तब मैं सुखी हुआ या सुख अनुभव किया। तो मैं जिस कारण से बेचैन हुआ था, मैं उस कारण की तलाश करूं, वो कारण था इच्छा का उठना, और वो हमारे बॉडी के जिस ऑर्गन में, जिस अंग में वो इच्छा उठती है, हम सब जानते हैं उसको मन कहते हैं, हम जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि मन ऐसी चीज है, ऐसा सूक्ष्म ऑर्गन है जिसके अंदर इच्छाएं कभी भी कोई भी हो सकती है, जिससे हमारा कोई कमांड नहीं चलता। यहां तक कि सो जाते हैं तब भी मन के अंदर इच्छाएं उठती रहती हैं और हम स्वप्न देखते रहते हैं। तो ऐसे मन पर मेरा जीवन आधारित है, और मैं इस मन का मालिक हूं, तो मेरा मन है वो, मैं इस मन का मालिक हूं। लेकिन गलती ये हो रही है कि मन का मालिक होने के बाद भी मैं अपने आप को देह ही समझ रहा हूं, जबकि सारे शास्त्र मिलकर एक साफ बात कह रहे हैं कि देह मात्र यंत्र की तरह से जो इच्छा पूर्ति के लिए यूज किया जाता है और कुछ भी नहीं है। देह मात्र यंत्र की तरह से है जो इच्छा पूर्ति के लिए यूज किया जाता है, और संसार भी एक साधन मात्र है जो इच्छा पूर्ति के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन जो इच्छा पूर्ति के कारण सुखी होता है, या इच्छा पूर्ति ना होने के कारण जो दुखी होता है या बेचैन होता है, मैं तो वो हूं ना, मैं वो हूं जो इच्छा पूर्ति के कारण सुखी सुख का एहसास करता है, इच्छा पूर्ति ना होने के कारण दुख या बेचैनी का एहसास करता है, और मैं वो हूं जो मन का मालिक है। और तीसरी बात, जब मैं साधना करने बैठता हूं, सिमरन करने बैठता हूं, उस समय भी मेरी यही परेशानी होती है कि मैं मंत्र को याद करना चाहता हूं और मैं देखता क्या हूं कि मन के अंदर तरह तरह के संकल्प होते हैं। तो जैसे मेरे संस्कार हैं, जैसा मेरा स्वभाव है, उसके अनुसार संकल्प निरंतर गति से नॉन स्टॉप उठते हैं। जैसे कि समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ तो लहरें नॉन स्टॉप उठती हैं, कभी इनका रुकना नहीं होता, उसी प्रकार मेरे मन की हालत होती है। अब मैं मन को देख रहा हूं, क्योंकि जब मौन हो तो आप मन को देख, ये भाषा यूज की जाती है, मन को देख रहे हैं, या यूं कह लें कि मन को अनुभव कर रहे हैं। मैं मंत्र के साथ लगना चाहता हूं, क्योंकि मैंने सीख रखा है कि मंत्र जो है वो ईश्वर होता है या ईश्वर का अवतार होता है, लेकिन मन मुझको उसके साथ लगने नहीं दे रहा है, इस कारण मैं बेचैन होता हूं। तो विचार करने की चीज यहां पर यह है कि मन के कारण मैं बेचैन हो रहा हूं। कौन बेचैन हो रहा है? जो मन को जानता है, जो मन का दृष्टा बना हुआ है, या यूं कह लें कि जो मन को देख रहा है। तो मैं मन को देख रहा हूं, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुझे पता है मेरे मन में क्या क्या संकल्प उठ रहे हैं और मुझको कैसे परेशान कर रहे हैं। तो सत्पुरुष कहते हैं कि तू इस बात पर यदि इसी तरह से विचार करे कि तू मन के कारण परेशान हो रहा है, तो जो मन के कारण परेशान हो रहा है, जो मन की गति को समझ रहा है, मन की गति को जान रहा है, उसका नाम उन्होंने जीव रखा है, या कहीं कहीं उसको जीवात्मा भी लिखा हुआ है। और महाराज जी ने एक टर्म और भी यूज किए इसी के लिए, संताविलास में पढ़ लें, जीव यानी बुद्धि। यदि हम बुद्धि को जानने वाली सत्ता माने तो फिर वो जीव है। तो इसीलिए पढ़ते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि महाराज जी ने बुद्धि का यहां कौन सा अर्थ वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या कौन सा अर्थ प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धि का होता है, एक होता है निश्चयात्मक शक्ति, एक होता है जानने वाली शक्ति। तो जो जानने वाली शक्ति है यदि वो बुद्धि है तो वो जीव है, और निश्चयात्मक शक्ति है जो निर्णय करने वाली शक्ति है उसका नाम बुद्धि है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेटिंग फैकल्टी। तो मैं जीव हूं जो मन के बारे में जानता है, मैं जीव हूं जो मन के कारण दुखी होता है, मन के कारण सुखी होता है, और मन के इस असंतोष से बचने के लिए ईश्वर ने मुझको इंद्रियां और ये देह और ये संसार दे रखा है, इसका इस्तेमाल करके मैं यदि चाहूं तो मन का असंतोष मैं दूर कर सकता हूं। लेकिन मेरा प्रैक्टिकल अनुभव यह है कि आज तक इतनी उम्र हो गई, वो संतोष मुझे कभी मिला नहीं। मन में कोई भी इच्छा जागृत हो जाती है, मैं उसके पीछे लग जाता हूँ, किसी के एक वर्ष निकल जाता है, किसी का एक दिन निकल जाता है, किसी के 10 वर्ष निकल जाते हैं उसकी इच्छा की पूर्ति में, बेचैन लेकर घूमता रहता है। तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि तू एक नहीं एक लाख जन्म भी मिल जाए तुझको, और एक एक जन्म में एक एक हजार वर्ष की आयु भी मिल जाए तुझको, लेकिन ये बेचैनी का अंत कभी नहीं होगा। और इसके सार रूप में महाराज जी वाणी उच्चारण कर रहे हैं, राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, तो कहां मिलेगा? वो कहते हैं मंगत सुखिया शोभया जिस शोभा पाई करता है। तो संतोष या सुखी वही जीव हो सकता है जिसने इस देह के अंदर ईश्वर की शोभा को, ईश्वर की एग्जिस्टेंस को जान लिया। इसका मतलब जिस प्रकार पूरा ऑपरेशन कर दो शरीर का, मन दिखाई नहीं पड़ेगा कहीं कहीं, इसलिए इसको सूक्ष्म ऑर्गन कहते हैं। उसी प्रकार पूरे शरीर का ऑपरेशन कर दो ईश्वर कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा और ना जीव दिखाई पड़ेगा। मन भी अदृश्य चीज है, ईश्वर भी अदृश्य चीज है और मैं भी अदृश्य चीज हूं, लेकिन मुझको दृश्य से मोह क्यों हो गया है? इसलिए हो गया है क्योंकि मैं अपने आप को ये दृश्य रूप देह समझने लगा। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, कितनी भी गलतियां करता हो लेकिन ये ऐसी गलती है जो पूरी जिंदगी का उसका सर्वनाश कर देती है, कि अपने आप को देह समझने लगना, ये ऐसी मिस्टेक है। तो सत्पुरुष इसी के लिए विवेक की बात है, उस विवेक में यदि, उस परिभाषा में यदि ये शामिल ही नहीं कि मैं देह नहीं हूं, तो उस विवेक की परिभाषा तो बेकार होगी, फिर हमारे किस काम है? तो इसलिए विवेक यदि अपने बारे में सीखना है तो सबसे पहले आपने ये प्रैक्टिकल मनन करना पड़ेगा। ये थ्योरेटिकल मनन नहीं है, ये प्रैक्टिकल मनन है कि मुझको पता है अच्छी तरह से डिजायर मन में उठती है और वो डिजायर मुझको बेचैन करती है, और चैन कब मिलता है फिर मुझे? जब वो डिजायर मेरी पूर्ण हो जाती है। यही जीने का तरीका है आपका। आइटम्स चाहे कुछ भी हो, लाखों आइटम्स उसमें जोड़ सकते हैं, परिवार भी जोड़ सकते हैं, समाज भी जोड़ सकते हैं, देश भी जोड़ सकते हैं, वस्त्र भी जोड़ सकते हैं, जो चाहे जोड़ लो, लेकिन बात एक ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसीलिए महाजी ने संतालासन लिखा कि हर जीव में पशु पक्षी भी आ गए और मनुष्य भी आ गए, हर जीव संसार में संतोष प्राप्ति की खातिर यत्न प्रयत्न कर रहा है, लेकिन किसी को भी संतोष की प्राप्ति नहीं हो रही है। अब जिस गुरु पर हमने विश्वास किया है, जिस गुरु को अपने जीवन में धारण किया है इस वास्ते कि ईश्वर से मेरी भेंट हो जाए, और गुरु का कोई पर्पज नहीं होता, तो वो गुरु आपको लिखकर दे रहा है अपने शास्त्र में कि सारे जीवों की एक ही दशा है कि हर जीव संतोष प्राप्ति की खातिर जीवन जी रहा है, अर्थात यत्न प्रयत्न कर रहा है, परंतु किसी को भी संतोष की प्राप्ति नहीं हो रही। इसका मतलब गुरु तो देखना जानता है, मैंने देखना नहीं सीखा, मैं सारी जिंदगी धोखा ही करता रहता हूं कि पहले सोचता था कि मैं हाई स्कूल पास हो जाऊं, इंटर पास हो जाऊं तो बड़े दुख से मुक्त हो जाऊंगा, बड़ी मौत की जिंदगी कटेगी, फिर सोचा शादी हो जाए तब बड़ी मौत की जिंदगी कटेगी, फिर सोचा कि परिवार बस जाए मेरा, फिर परिवार बड़ा होके अपने पैरों पे खड़ा हो जाए तब बड़ी मौत की जिंदगी कटेगी, लेकिन तब तक आते आते बुढ़ापा आ जाता है, मौत अपनी ही याद आने लगती है। तो इसलिए सत्पुरुषों को कोई संशय नहीं है, वो तो पूरा जीवन दुख रूप समझ रहे हैं और समझा रहे हैं आपको। हम ही संशय में खड़े रहते हैं कि इस दुख रूप संसार में, दुख रूप जीवन में सुख की आशा लेकर जीते, उसके लिए पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ हमारा कंप्लीट फेलियर है। मनुष्य जन्म का यह कंप्लीट फेलियर है, चाहे आप कितने भी बड़े से बड़े ईमानदार क्यों ना हो, कितने ही बड़े से बड़े पुरुषार्थी क्यों ना हो, कि आप दो मिनट भी ना बैठो चैन से, सारे जगत की निरंतर सेवा ही करते रहो चाहे आप, लेकिन यदि आपको अपनी ही समझ नहीं है तो सेवा भी बेकार, आपका सत्य का पालन करना भी बेकार और आपका पुरुषार्थ करना भी बेकार। इसीलिए योग वशिष्ठ में एक जगह परिभाषा आती है, वशिष्ठ मुनि करते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। मैं भूल रहा हूं ये परिभाषा वेद व्यास की है या वशिष्ठ मुनि की, दोनों में से किसी एक की। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है उसको, या जो यत्न किया जाता है उसको पुरुषार्थ। और आप बताइए, तो आप उसमें एक वर्ड जोड़ सकते हैं चाहे तो, सत पुरुषार्थ कहते हैं। लेकिन मनुष्य से जो आशा की जाती है कि वो पुरुषार्थ करेगा, वो कोशिश करेगा, तो उसके लिए सतपुरुष एक ही बात कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए कोशिश करेगा, ईश्वर प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करेगा। अन्य तो वो उसको प्रारब्ध कहते हैं, अन्य मैं जो कोशिशें करता हूं संसार में, वो तो कहते हैं जैसे कि एक पशु पक्षी है, ऑटोमेटिकली उनका एक इंस्टिंक्ट होता है, उस इंस्टिंक्ट के वशीभूत होकर वो घोंसला बनाते हैं, घर बनाते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। वो इनकी एक ऑटोमेटिकली जैसे कहते हैं मैकेनिकल लाइफ है, उसी प्रकार से हमारी भी वसी है, वो पुरुषार्थ नहीं है। हमारा पुरुषार्थ ये है जिसको करने के लिए मैं संसार में आया था। इसलिए वाणी याद दिला रही है, मनुष्य जन्म सफल हो गए जब प्रभु दाता चित्त आए, प्रभु के सिमरन कार में ये दुर्लभ जीवन पाए। देखिए ना कि साथ साथ तो इसे सरल वाणी क्या होगी। इस वाणी को सामने रखकर मैं सोचूं अपने बारे में, मैं क्या करता रहा हूं और क्या करने की प्लानिंग कर रखी हूं, क्योंकि ये सारी बातें आपको तब समझ में आएंगी जब आप पहले ये सीखोगे कि मैं मन का मालिक हूं, मैं वो हूं जिसके ऊपर मन का सीधा सीधा असर पड़ता है, मैं वो हूं जो संसार में कर्म करता हूं उसके परिणाम स्वरूप, उसके फल स्वरूप जो सुख मिलता है, जो दुख मिलता है, जो सुख दुख भोगता है, वही तो मैं हूं। तो उस मैं का नाम शरीर नहीं है, उस मैं का नाम कोई नाम नहीं है जो हम अपना नाम लेते हैं, उस मैं का नाम है जीव, जो सबका ही नाम है, सबका कॉमन नाम है, सबकी कॉमन परेशानी है। इसीलिए मैंने यदि अध्यात्म विद्या सीखी है और यदि मैं ईश्वर मार्ग पर चलने की चाह रखता हूं, तो अंदर मुझको ये भाव मेरे अंदर बना रहना चाहिए कि मैं जीव हूं। इसीलिए अब ये जीव इसके मन के क्लेश से बचे कैसे, जो मनुष्य हैं, जो हम देखते हैं संसार में चलते हुए, ये तो शरीरधारी हैं, शरीर तो मैंने भी धारण कर रखा है और जब तक जीव रहूंगा शरीर रहेगा मेरा, लेकिन मैं शरीर हूं इस ये भाव मुझे पकड़ा हुआ। मनुष्य मुझे बनाया गया है, तो मेरी माँ जी कहते प्रेमी तेरी बुद्धि में इतना होश दिया गया है कि तू ये बात सीख सकता है, पशु पक्षी नहीं सीख सकते ये बात, आप सिखा सकते हो किसी को? तेरी बुद्धि में इतना होश दिया गया है या जीव को इतना होश दिया गया है कि वो ये समझ सकता है कि मैं जीव और मेरा बंधन क्या है। तो अब इस बंधन से मुक्ति कैसे मिले, जीव की परेशानी ये होनी चाहिए, या यूं कहने कि हर मनुष्य की परेशानी ये होनी चाहिए कि इस मन के बंधन से मुझको मुक्ति कैसे मिले, इसके लिए ये मानव जन्म व्यतीत किया जाता है। तो सतपुरुष तीसरी बात कहते हैं कि तू ईश्वर को तो मानता है, जो नास्तिक है उनकी तो बातें नहीं हो रही, तू ईश्वर को तो मानता है लेकिन ये नहीं समझता कि ईश्वर मन से भी सूक्ष्म है। मन तो फिर भी कहा जाता है कि मन को हृदय भी कहते हैं, मन का कोई केंद्र भी शरीर में कहा जाता है, लेकिन ईश्वर इस देह के अंदर, महाजी कहते हैं कि रोम रोम में बसा हुआ, ईश्वरीय शक्ति तेरे रोम रोम में व्याप्त है। रोम रोम में रमत स्वामी, राम नाम भज अंतर्यामी। अब बताइए मेरे रोम रोम में वो बसा हुआ है, इसीलिए पूरी देह का संचालन हो रहा है, नहीं तो कब की मृत है ये। तो उस ईश्वरीय शक्ति के कारण, उस ईश्वरीय सत्ता के कारण ये देह मेरी चलती फिरती नजर आ रही है और मैं इसका उपयोग कर पा रहा हूं। इसलिए मैं देह का मालिक नहीं, देह का मालिक ईश्वर ही है। इसलिए इस देह का प्रारब्ध ईश्वर के हाथों में है, मेरे हाथों में नहीं है। तो वो जो ईश्वर इस देह का मालिक है, इस देह के अंदर ही विराजमान है और इस मन से और इस जीव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा शक्तिशाली है। महाराज कहते प्रेमी उस ईश्वर के अंदर शांति है, उस ईश्वर के अंदर परमानेंट सुख है, उस ईश्वर के अंदर आनंद है और उस ईश्वर के अंदर ज्ञान है, अर्थात वो ज्ञान रूप ही है। इसलिए जो आपको असली ज्ञान होता है, जिसको शास्त्रों के माध्यम से आप सीखते हो, लेकिन उसका जो असली ज्ञान प्रैक्टिकल ज्ञान है, वो उस ईश्वर को ज्ञान रूप ही कहा जाता है। इसलिए जो इस ईश्वर को जान लेता है, सारे शास्त्रों का मर्म वो अपने अनुभव से जान जाता है। तो वो जो ईश्वर है, महाजी कहते हैं प्रेमी इस देह के अंदर एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि ऐसे विद्यमान है जैसे कि गन्ने के अंदर चीनी विद्यमान होती है। हम सब जानते हैं कि गन्ने में चीनी नहीं होती, गन्ने में तो रस होता है, लेकिन रस गन्ने के रोम रोम में बसा होता है। यदि ठीक विधि अपनाई जाए, ठीक तरीका अपनाया जाए, तो उस रस को गन्ने से अलग किया जा सकता है, फिर रस से चीनी को अलग किया जा सकता है। तो उसी प्रकार महाजी कह रहे हैं प्रेमी तेरे देह के रोम रोम में ईश्वर विद्यमान है, लेकिन तो यथार्थ विधि से और यथार्थ प्रयत्न से उस ईश्वर को इस देह से अलग करके जान सकता है। क्योंकि ईश्वर को जानने के पश्चात ये देह तेरी जला दी जाएगी, ये मर जाएगी, ईश्वर मर जाएगा क्या? इसलिए वो कह रहे हैं कि इस देह से ईश्वर को अलग करके जाना जा सकता है। तो इस देह से अलग कैसे किया जाता है, उसके बारे में सब कुछ कहते हैं कि तू सिमरन करना शुरू कर। और सिमरन किसका कर? या तो गुरु डायरेक्ट दिशा मिल जाए तुझको, या जो कुछ बताए, नहीं तो सिद्ध मंत्र का जाप कर जो कि गुरु से प्रकट हुआ हो, जिसके बारे में पता हो कि वास्तव में ये सिद्ध मंत्र है। तो सिद्ध मंत्र ईश्वर खुद होता है, इसको गीता के बारे में भी आप गीता में पढ़ें तो भगवान कृष्ण वहां लिख रहे हैं या कह रहे हैं कि मंत्रो अहम, मैं मंत्र हूं, और मंत्र का जप किया जाता है, जो सिद्ध मंत्र होते हैं उनका जप किया जाता है, इसको भक्ति मार्ग भी कहते हैं। और जो योग मार्ग होता है उसमें सूक्ष्म मंत्र श्वास के साथ जाप किया जाता है, जिसके लिए शास्त्रों की वैदिक काल से ये शर्त चली आई है कि योग मार्ग में पूर्ण गुरु ही शिष्य को दीक्षित कर सकता है, दीक्षित या उसको लगा सकता है। नकल करके कोई योग मार्ग को नहीं अपना सकता, यदि कर तो सकते हैं कुछ भी, लेकिन हम गलती करते। तो इसीलिए समय समय पर ऐसे सिद्ध मंत्र प्रकट होते हैं, वैदिक काल से होते रहे, जैसे कि वैदिक काल में गायत्री मंत्र प्रकट हुआ ऋग्वेद का, और आधुनिक काल में हम जानते हैं कि महामंत्र प्रकट हुआ वाणी के रूप में। तो ऐसे मंत्र की जब मैं उपासना करता हूं तो ये जो मंत्र शक्ति है, बोलने में आ रहा मंत्र शक्ति है, लेकिन वास्तव में ये जो ईश्वर शक्ति, तो कहना यूं चाहिए, ये जो ईश्वर शक्ति है, यह ईश्वर शक्ति इस ईश्वर शक्ति के साथ मेरा संबंध बनता है। और इसका इस ईश्वर शक्ति का प्रारंभिक कार्य क्या होता है? प्रारंभिक कार्य ये होता है कि मेरे मन के अंदर जो जन्म जन्मांतर के संस्कार बैठे हुए हैं, क्योंकि मन मेरा वही ट्रांसफर होता है, बॉडी तो खाक हो जाती जलकर, लेकिन मन को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, मन और इंद्रियां इनका खात्मा नहीं होता, ये इंद्रियां मन के अंदर प्रवेश कर जाती हैं और ये मन जो है फिर वो अंत में ये सारा सारा कुंडलनी के अंदर ही प्रवेश कर जाता है, या यूं कहने की ईश्वर के अंदर ही प्रवेश कर जाता है। तो इसीलिए उस ईश्वरी सत्ता से पुनः यही जीव अपने ही मन इंद्रियों को लेकर ये शरीर धारण करता है, या ये कहिए कि ईश्वर के द्वारा इसको शरीर इसके ही कर्मों के अनुसार, इसके ही संस्कार के अनुसार प्रदान किया जाता है, और वैसे ही इसको संसार दिया जाता है जैसे इसने संसार बना। तो वर्तमान जन्म में यदि मैंने गुरु धारण किया है तो मैंने गुरु से यही तो सीखना है कि मैं कौन हूं, मुझको बंधन किसका है, इस बंधन से मैं मुक्त कैसे हो सकता हूं, कौन मुझको बंधन से मुक्त करेगा। तो तीन ही बातें हमको सिखाई जाती हैं कि मैं जीव हूं, बंधन तुझको मन का है, तो इस मन के बंधन से तुझको ईश्वर मुक्त करेगा। और ये तीनों सदैव संग रहते, ये कभी एक सेकंड के लिए भी, एक माइक्रो सेकंड के लिए भी ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं। तो ऐसा ईश्वर जो मौत के पश्चात ही मेरा संग नहीं छोड़ता, मुझको नई देह प्रदान करता है, मेरे संस्कारों के अनुसार नया संसार मुझे प्रदान करता है, उस ईश्वर को मैं भूले रहता हूं। संसार की माया के, संसार के पैसों के लिए, संसार की डिग्री के लिए मैं कितना होशियारी से काम करता हूं, कितनी तीव्र इच्छा करके काम करता हूं, कितनी बेचैनी लेके मैं जीता हूं, प्लानिंग करता हूं, और ऐसा ईश्वर जो मेरा जीवन ही है, इसको मैं भूले रहता हूं। गुरु लिख कर दे रहा है कम से कम एक घंटा सुबह, एक घंटे सायकाल सुमरण करना लाजमी है, खाना खाने से भी ज्यादा जरूरी सुमरण को समझना। मैं अपने प्रोग्राम में रहता हूं, क्या करूं, मैं सुन तो मैंने रखा है, पढ़ तो रखा है, बनाऊंगा जरूर, जरा ये और कर लू, जरा वो कर लू, जरा वो कर लू, कल का तो ये पता नहीं है, प्लानिंग तूने अभी भी 10 साल की कर रखी है और 1 साल भी तू जिएगा नहीं जिएगा इसका तुझे बोलूंगा। तो प्रैक्टिकली मैं कहाँ खड़ा हुआ हूं, मैं देह में ही खड़ा हुआ हूं, अर्थात मैं देह हूं, इसी भाव से जी रहा हूं। लाख सत्संग सुनने के बाद भी मेरा निश्चय बदलता नहीं, बुद्धि इतनी जड़ हो चुकी है कि जीव का ये निश्चय बदलता ही नहीं है कि मैं देह। इसीलिए इसके अंदर वो लगन पैदा नहीं होती है, ईश्वर की वो इंपॉर्टेंस पैदा नहीं होती है, ना ये कभी ये समझ पाता है कि ये संसार दुख रूप। हम सब सुनते हैं संसार दुख रूप, यदि शायद ही किसी का निर्णय होता हो संसार दुख रूप, अंदर से आप सोचते देखेंगे तो आपको, आप इसी निर्णय को सुनते हो संसार दुख रूप। ये तो वैदिक काल से शास्त्र कैसे चले आए, देखो उपनिषद क्या कह रहा है, दुखम सर्वम अनुस्मृत, सब कुछ दुख ही है ये मत भूलो, दुखम सर्वम अनुस्मृत, मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है। इसका मतलब संसार में कुछ भी क्यों ना कर लो आप, आपको बेचैनी ही मिलेगी। तो जीने का रास्ता क्या बता रहा है वेद, काम भोगान निवर्तयेत, जीने का रास्ता है ये, कामनाओं और भोगों से निवृत्ति प्राप्त करो। अब आप देख लो जीने का उल्टा रास्ता में बना रखा, नहीं बना रखा, और फिर आपको शांति चाहिए, फिर आपको ईश्वर भक्ति चाहिए, फिर आपको ईश्वर दर्शन चाहिए, तो मिल पाएगा कभी कुछ, कोई संभावना है? तो इसलिए ये विवेक जब तक आपको अंदर नहीं, जितनी बात ये अब तक की गई, ये विवेक आपकी बुद्धि में यदि कायम नहीं रहता तो आप ये काम नहीं कर पाओगे, जिस काम के द्वारा आपको परम संतोष की प्राप्ति होनी है, जिस काम के द्वारा जो अंतर्यामी ईश्वर है मेरे संग ही रह रहा है और जो मेरी इतनी सेवा कर रहा है कि इस देह को जिंदा रखिए, इससे बड़ी सेवा क्या चाहते हो आप बताओ? बड़े से बड़ा डॉक्टर, तेरे बड़े से बड़े होशियार माता पिता भी तेरी देह को जीवित नहीं रह सकते, ये आर्ट उनके पास नहीं है। तेरे देह को जीवित केवल ईश्वर रख सकता है और उस ईश्वर को तू भूले बैठोगा संसार के कामों के कारण, संसार की बातों के कारण, अपने गलत संस्कारों के कारण। उसकी इंपॉर्टेंस सुने, पता नहीं कौन से नंबर पर रखे। तो इसीलिए यदि जिंदगी में ठीक चलना है तो ये विवेक 24 घंटे मेरा कायम रहना चाहिए कि मैं जीव हूं, इस देह इंद्रियां मन के बंधन में मैं जी रहा हूं, ये मुझको बर्बाद कर देंगे। यदि मेरे बचने का कोई रास्ता है संसार में तो वो ईश्वर के पास, और वो ईश्वर खुद इस देह के अंदर मौजूद है, वो मेरा मालिक है। महाजी देखो कैसा एश्योरेंस आपको दे रहे हैं, सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार। खाली अंदर गुरु बैठा नहीं है, वो हर पल तुझको पुकार रहा है कि आ मेरी तरफ। और कैसे आ, आज्ञाकारी होए के घटका पाप। तूने गुरु की आज्ञा क्या है, संता विलास गुरु की आज्ञा है, इस आज्ञा का तुम्हें जीवन में पालन करना था। उस उमंग के साथ, उस तीव्र लगन के साथ, तीव्र इच्छा के साथ कि इसके बिना जिंदगी बर्बाद हो जाए। यदि तुझको अपनी जिंदगी की बर्बादी नजर आ रही है गुरु की आज्ञा पालन ना करने में, तब तू होश में है, तब ये जीव होश में है। अब बताइए ऐसा होश वाला जीव सिमरन को छोड़ देगा? उसके अंदर ये होश रहता है कि सबका जीवन प्रारब्ध के अधीन है, उस जीवन का प्रभु मालिक जो है वो अंदर बैठा हुआ है, मैं कोई नहीं। इसीलिए मुझको सारे शास्त्र क्या आदेश देते हैं, तू कर्तव्य भाव से संसारियों संसारी कर्म करना सीख। कर्तव्य भाव से, मैं मोह भाव से संसारी कर्म करता हूं। इसीलिए इस देह अध्यास से मैं कभी ऊपर नहीं उठता था। प्रैक्टिकली मैं देह ही 24 घंटे बना रहता हूं और यही मैं दिखाता रहता हूं लोगों को। इससे पता लगता है कि कितने गहरे मनन की आवश्यकता है। पढ़ाई कम चाहिए, मनन ज्यादा चाहिए। आप खुद देखिए कि आप ये ज्ञान, ये बातें आप सैकड़ों बार सुन चुके हैं, लेकिन क्या आपके मनन में ये चलती है बातें? प्रैक्टिकली देखो, आप ईमानदारी से प्रैक्टिकली देखो, क्या आपके मन के अंदर ये बातें चलती हैं? क्या आप सुख को बंधन रूप करके देखते हो? कभी सुख को तो आप एंजॉय करते हो और वेलकम करते हो और इच्छा करते हो उसकी बार बार प्राप्ति। जबकि गुरु की बात पढ़ें तो मां जी साफ लिख रहे हैं, संता बात नहीं पढ़ लो, हर सुख दुख में बदल जाता है। सुख से ही दुख उत्पन्न होता है, विज्ञान तो देखिए अध्यात्म विद्या, सुख से ही दुख उत्पन्न होता है। इसका मतलब हो गया, जिसने सुख की लंबी प्लानिंग की है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, वो ज्यादा दुखी जीवन भविष्य में भोगेंगे, ज्यादा बेचैनी लेकर वो जीना ही पड़ेगा। क्योंकि ये संसार द्वंद रूप है। द्वंद का मतलब होता है कि एक चीज दूसरे का निर्माण करती है, सुख दुख का निर्माण करता है और दुख सुख का निर्माण करता है। जैसे कि तेज प्यास लगी हो तो प्यास का दुख होता है ना, तो उतना ही पानी पीने में आनंद आएगा। तो प्यास का जितना दुख भोगे आप, पानी पीने का उतना ही सुख होगा। भूख जितनी तेज लगी होगी खाने खाने का, उतना ही स्वाद ज्यादा आएगा। भोजन सेम हो लेकिन स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा भूख का दुख आपने जितना भोगा है उतना ही खाने का सुख आप भोगेंगे। तो शास्त्र इसको द्वंद कहते हैं, ये सारा का सारा संसार द्वंद रूप है। और द्वंद का मतलब है दो पोल, एक पोल दूसरे का निर्माण। और इसके लिए एक बड़ा सरल सा उदाहरण वैदिक लिटरेचर में आता है। एक शब्द इस्तेमाल किया हम जानते हैं, वो संवत्सर। संवत जानते ना लोग, संवत्सर। संवत्सर क्या है? एक सिद्धांत है ये कि एक वर्ष जो पूरा होता है, आप देखते हैं इसमें ठंडक होती है और गर्मी होती है, ये दो ही तो होते हैं। तो सर्दी गर्मी जो बोलते हैं इसको द्वंद कहते हैं। तो जो गर्मी है उसको अग्नि कहा जाता है और जो ठंडक है उसको सोम कहा जाता है। तो आप देखिए कि जैसे जैसे जाड़ा बढ़ता है गर्मी कम होती है। इसका मतलब जो सोम है वो अग्नि को खा रहा है, सोम अग्नि को खा रहा है। जैसे ही अग्नि को सोम खा लेता है, अर्थात जाड़ा जब क्लाइमेक्स पे पहुंचता है, उसके बाद ये अग्नि सोम को खाने लगती है और पुनः ठंडक को खा जाती है, तेज गर्मी हो जाती है। और जब अग्नि पूर्ण होती है तो वैसे ही सोम अग्नि को खाने लगता है, इसको संवत्सर बोलते हैं। ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता रहता है, अर्थात सुख से ही दुख की उत्पत्ति होती है, दुख से ही सुख की उत्पत्ति होती है। तो ये वैदिक कंसेप्ट है जो सारी प्रकृति चक्र को समझा रहा है, जिसको सरल रूप में महाजी कह रहे हैं सुख से ही दुख उत्पन्न होता है। ये वैदिक कंसेप्ट है, महाजी वो वैदिक कंसेप्ट नहीं लिखा, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया ये द्वंद्व रूपी जगत। तो द्वंद्व इसको कहते हैं, इसमें से एक चीज आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, हम इसमें से एक पसंद कर लेंगे, ये मुझे पसंद है और ये मैं पसंद नहीं करता। तो पूरा जन्म तेरा ये पसंद करता हूं, ये पसंद नहीं करता हूं, ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, इस द्वंद्व में तेरा पूरा जन्म निकल जाता है। और ये द्वंद्व पूरा का पूरा बेचैनी को लिए हुए है, ये शास्त्र सिखाने की कोशिश करता है। इसीलिए तूने यदि संसारी तरीके में चलकर तूने सफलता प्राप्त की है, सुख इकट्ठे किए हैं, तो याद रख तूने अपनी जिंदगी की कब्र तैयार की, अर्थात मौत का दर्शन मिलेगा, जिंदगी तेरी निरर्थक चली गई। तो जीने का मतलब एक ही होता है कि अंतर्यामी ईश्वर को जानने के लिए जीना। तो महाराज जी ने जो पांच नियम बताए उसका उद्देश्य तो यही है ना, उसका कोई उद्देश्य नहीं। सादगी अपने आप में कोई महत्वपूर्ण नहीं है, सारे जानवर सादा होते हैं, क्या डेवलपमेंट हो जाता है उनका? सादगी का मतलब ये है, सारे जो पांचों नियम है एक ही मतलब है कि तेरे अंदर विवेक आए और तू भोग वृत्ति को जहर रूप देखना शुरू कर, क्योंकि तेरे अंदर असंतोष पैदा करती है, जीव के लिए असंतोष ही तो जहर है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं प्रेमी तू मर्यादा का जीवन जी। मर्यादा का जीवन का मतलब होता है जो तेरी देह की आवश्यकता है, अपनी देह की, परिवार की देह की, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तू सोच। वो भी कहते हैं ईश्वर प्राण होकर कि देने वाला प्रभु आप तू ही है, भाग में है तो साधन तू दे देगा, लेकिन कर्तव्य बोध से मुझको प्रयास करना है। महर्षि रामकृष्ण परमहंस कहते थे कभी कोई आ जाता था उनके पास गृहस्थी जीव और कहता था कि मैं यहां रहूंगा, तो जब वो चला जाता था कहते थे बाकी शिष्यों से इसके बच्चे क्या मैं पालूंगा, इसके घर में बच्चे पले हुए हैं, यहां रहेगा ये? कहने का मतलब ये सत्पुरुष कर्तव्य पालन तो मान ही करते हैं, लेकिन हम मोह भाव से जीते हैं उसके लिए वो जागरूक होने को कहते हैं, वो कर्तव्य भाव से जीने की बात है। फिर वो एग्जाम्पल देते थे कि चिड़िया के जब बच्चे हो जाते हैं, जब तक अंडे रहते हैं सेती है उसको, छोटे बच्चे होते हैं तो चोंच में दाना इकट्ठा करके लिए खिलाती है, लेकिन जब पर निकल आते हैं तो चोंच मार के धक्का देती थी घोंसले में कि जा उड़ो अपने दल पे। लेकिन हम मोह भाव से सब कुछ छिपाए रहते हैं, गले मैं और मेरा करके। तो सारी बात का सार एक ही है कि ये जो विवेक है, प्रैक्टिकल विवेक, कि मैं जीव हूं, मैं मन इंद्रियां और देह के बंधन में हूं और देह करके संसार के बंधन में हूं, मैं कुछ भी संसार में क्यों ना कर लूं, कुछ भी क्यों ना कर लूं, मैं सुखी नहीं हो सकता। सुखी का मतलब होता है संतुष्ट नहीं हो सकता। असंतोष लेकर ही जिया हूं आज तक, असंतोष लेकर ही मैं बाकी जीवन भी जीऊंगा, असंतोष लेकर ही संसार से मैं विदा हो जाऊंगा। तो ये मेरी कुल करनी हुई, इस जीवन का नतीजा क्या निकला, इसलिए होश में रहते हुए मैंने गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार अपने आप को जीव समझना है और इस इंद्रिया देह को इंस्ट्रूमेंट समझना है, कर्म करने का साधन समझना है और इस साधन का इस्तेमाल मैंने ईश्वर प्राप्ति के लिए करना है और कर्तव्य पूर्ण करने के लिए करना है, इच्छाएं पूर्ण करने के लिए नहीं, कर्तव्य पूर्ण करने के लिए, परिवार का पालन भी करूं, कर्तव्य बोध से करूं, ना कि सुख प्राप्ति के बोध से। मैं सुख प्राप्ति के बोध से परिवार पालन करता हूं, जो बंधन बन जाता है मेरे लिए। तो कर्तव्य बोध के साथ मैंने संसारी जीवन जीना है और कर्तव्य बोध का मतलब एक ही होता है अध्यात्म में, कि दिमाग से कभी भी इससे नहीं निकलता कि ये जन्म ईश्वर प्राप्ति के लिए हुआ है, और ये थ्योरी नहीं है, ये ईश्वर प्राप्ति के लिए हुआ, प्रैक्टिकल जीवन इसका प्रमाण होना चाहिए कि तू ईश्वर प्राप्ति के लिए जी रहा है, तेरा प्रैक्टिकल जीवन इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि तू ईश्वर प्राप्ति के लिए जी रहा है, तेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज वही। ये होश इसके अंदर बना रहता है, उसके अंदर जो इस देह के अंदर ईश्वर रमा हुआ है उसके साथ भी उसकी सूरत लगी ही रहती है, नहीं छूट सकती। जिसके लिए आप जी रहे हो उससे सूरत आपकी अलग हो सकती है, तो जब सुबह शाम सिमरन करने बैठते हो, केवल ईश्वर के लिए बैठते हो, तो उस समय आपको पता होता है कि मन से कोई ईश्वर में ऑटोमेटिकली लग रहा है नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये मत समझ लिया कि मन में संकल्प नहीं उठेंगे, वो तो उठेंगे, लेकिन पहले जो खींच के ले आते थे वो पावर होती थी, वो पावर गायब हो चुकी होगी, वो उसकी पावर नहीं होगी। अभी तो तड़पा देता है मन हमको, फिर तड़पा नहीं पाएगा, चीजें आपके मन में याद आएंगी, वो तब तक याद आती रहेंगी जब तक आपकी वो स्थिति नहीं हो जाएगी जिसको समाधि कहते हैं। समाधि में मन शांत हो जाता है, उस समय संकल्प का उठना संभव ही नहीं। तो वो ईश्वर जो अंतर्यामी ईश्वर आपको उस स्थिति तक ले आता है, यदि आप सिंसियर हो, आप इस विवेक के साथ पुरुषार्थ करते हो, सब पुरुषार्थ करते हो, तब जाकर आपको एक चैन मिलता है कि जो भी आयु व्यतीत की है मैंने, चाहे वो 5 साल निकले चाहे वो 10 साल निकले, होश में व्यतीत की है। ऐसी हालत में जब देह की मृत्यु आएगी आपके अंदर एक संतोष तो रहेगा, प्रभु होश मुझे देर से आई लेकिन जब आई तो फिर पूरी आई, मैंने फिर लापरवाही। इसीलिए जब जाए यहां से तो ये संकल्प लेके जाए कि अब मैं ईश्वर को नहीं भूलूंगा, वो मेरे रोम रोम में जमा हुआ है, वो कहानी नहीं है, ईश्वर कोई किस्सा नहीं है, वो कोई कल्पना नहीं है, वो जीवन जीवन की उसी प्रकार वास्तविकता है जिस प्रकार मन मेरे जीवन की वास्तविकता है। मैं मन को भूल सकता हूं कभी, तो जिस प्रकार मन मेरे जीवन की वास्तविकता है उसी प्रकार मन से ज्यादा ईश्वर मेरे जीवन की वास्तविकता है, क्योंकि मन तो एक दिन खत्म हो जाएगा लेकिन ईश्वर कभी, वो आनंद रूप है, सुख रूप है, संतोष रूप है, शांति रूप है, मोक्ष रूप है, वो अमर लोक है, मैंने उसकी यात्रा करनी है, उसके लिए मानव जीवन व्यतीत करना। ओम।